ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गि राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापान शालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रिया वरीयसि प्रेमभक्ति प्रदे देवी क्षीराधिका त्वं नमोऽस्तु ते अखलमण्डलाकारा व्याप्तयेन चराचरं तत्पाददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः राधानाथसमारम्भ्य मध्वमुनिं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की जो भगवान का प्रपंचगत महात्म्य है, यानी पूरे प्रपंच को निर्माण कैसे भगवान करते हैं, किस प्रकार से उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं और किस प्रकार से उसमें से बाहर भी निकालते हैं, उसकी चर्चा हमने की। तो आज का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 43, इसमें ब्रह्मा जी भगवान के धाम, देवी धाम तथा शिवजी का जो धाम है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और विशेष करके भगवान का जो निज धाम है जिसको गोलोक कहा गया है उसका यहां पे वर्णन करते हैं। और श्री जीव गोस्वामी पाद उनके टीका में गोलोक धाम के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। तो प्रयास करते हैं कि अच्छी तरह से इस श्लोक को हम समझें, ताकि हमारी जो कल्पनाएं हैं गोलोक के बारे में, इस भौतिक धाम के बारे में, कैलाश जिसको हर धाम भी कहा जाता है या महेश धाम भी कहा जाता है और सदाशिव लोक भी कहा जाता है, उसके बारे में इनको जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उनके नाम के सामने कभी कभी लगा देते हैं वैकुंठवासी, यानी मृत्यु के पश्चात लोगों की कल्पना रहती कि वो वैकुंठ चले गए, या तो फिर कैलाशवासी या कैलाश चले गए, और या तो गोलोकवासी लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये भगवान के धाम कहां पे है। तो इस श्लोक में गोलोक नामनी से उसकी शुरुआत करके वे भगवान के निजगत धाम का महिमा हमें बताते हैं। तो आइए इस श्लोक का गान करते हैं। गोलोक धामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो यहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोलोक नामनी निज धामनी, गोलोक नाम सर्वोपरि, गोलोक नामक जो भगवान का धाम है वो सर्वोपरि विराजमान धाम है। जो अलग अलग देवी धाम, महेश धाम, वैकुंठ या हरि धाम जिसको कहा जाता है, उससे भी सर्वोपरि ऊपर ये भगवान का धाम है। और फिर तस्य तले च, और उस गोलोक धाम के नीचे, तेषु तेषु देवी महेश हरिधामसु च, और फिर उसके नीचे है देवी धाम, सबसे नीचे देवी धाम है, उसके ऊपर महेश धाम है, और उसके ऊपर वर्तमान में हरिधाम यानी एक वैकुंठ धाम है। और तेते प्रभाव नीचया, उन उन धामों के अनुरूप शास्त्र आदि में प्रसिद्ध प्रभाव समूह है, और विहिता विहित हुए है तम, ऐसे जो गोविंद है आदि पुरुष जो भगवान है मैं उनका भजन करता हूं, ऐसा ब्रह्मा जी का कहना है। वे कहते हैं कि 14 भुवन रूपी देवी धाम, उसके ऊपर महेश धाम, और उससे ऊपर में हरिधाम, एवं सबसे ऊपर गोलोक नाम का अपना निज धाम यानी स्वयं भगवान का श्री गोविंद का धाम है। और उन उन धामों के अलग अलग विशेष विशेष प्रभावों का जो नियमन करते हैं, उन आदि गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी जी अपनी टीका में लिखते हैं कि तदिदं प्रपंचगतं महात्म्यं उक्त्वा निजधाम गतमहात्म्याः गोलोके इति, कि अभी तक उन्होंने प्रपंचगत महात्म्य हमें बताया और अब अपने स्वयं के धाम की महिमा इस गोलोक नामनी श्लोक में प्रकाश की है। देव्यादीनाम यथोत्तरम ऊर्ध्वो अर्ध प्रभाव तत्वावलोकमन ऊर्ध्वा अर्ध भावित्वम मिति। वे बताते कि इस श्लोक में देवी महेश आदि धाम की व्युत्पत्ति क्रम से अर्थात विपरीत रूप से दिखाई गई है। गोलोकस्य सर्वोधगामित्वम सर्वेभ्यो व्यापकत्वम च व्यवस्थापितमस्ति हि भुवि प्रकाशमानस्य वृंदावनस्य तु तेना भेदः पूर्वत्र दर्शितः। वे यह बताते हैं कि देवी धाम आदि से प्रारंभ कर ऊपर ऊपर के धाम का वर्णन करते हुए सबसे ऊपर विराजमान अपना जो गोलोक धाम का स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। और कैसा है वो धाम? गोलोकस्य सर्वोधगामित्वम, जो सबसे श्रेष्ठ और सर्वतोपरि है। और फिर कहते हैं कि सतु लोकस्त्वया कृष्णा सिदमानः कृतात्मना धृतो धृतिमता वीर निघ्नतो उपद्रवम गवाम इत्येन अनेन भेदेनैव हि। और यहां पे बताते हैं कि वह गोलोक धाम सर्व ऊर्ध्वगामी होने से समस्त धाम में व्यापक रूप से अवस्थित है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। और कौन उसको प्राप्त करता है? वे बताते हैं कि केवल जो बुद्धिमान लोग है वही इसको प्राप्त करता है, करते हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। और जैसे हरिवंश में कहा गया है कि ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, परंतु वह गौओं का लोक गोलोक अतिशय दुर्लभ है। क्योंकि केवल और केवल मात्र धीर पुरुष ही उस धाम को प्राप्त कर पाते, सबके बस की बात नहीं है और वो सबके लिए सुलभ नहीं होता है, क्योंकि वो सारे उपद्रवों से मुक्त है। श्री वराह पुराण में कहा गया है कि वृंदावनम द्वादशकम वृंदाया परिरक्षितम हरिनाम अधिष्ठितम च तच्च ब्रह्म रुद्रादि सेवितम। ये गोलोक जो है ये आदि वराह पुराण में कहा गया है कि ये वृंदावन जो है गोलोक वृंदावन, और विशेष करके आदि वराह पुराण में कहा गया है कि जो भौम वृंदावन है इसमें अभिन्नता है, ये कोई अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है और भगवान नित्य रूप से यहीं पे निवास करते हैं, गोलोक में ही निवास करते हैं। और वृंदावन के जो 12 वन है जो वृंदा देवी के द्वारा परिरक्षित है यानी संरक्षित है, और वहां पे श्रीहरि नित्य रूप से निवास करते हैं, और ब्रह्म रुद्र आदि देवता जो है वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। ब्रह्म रुद्र आदि सेवितम, यही वृंदावन में सारे देवताओं के द्वारा भगवान नित्य सेवित है, उनकी सेवा की जाती है। और यहां पे विशेष क्या है तो कृष्ण क्रीड़ा सेतु बंधम महापातक नाशनम वल्लभी ही क्रीडनार्थ कृत्वा देवो गदाधरा। भगवान यहाँ पे सेतुबंध की लीला वगैरह करते हैं जिसके श्रवण मात्र से ही हम सारे पापों से, यहां तो कहते हैं कि महापातशम पातम पातकम नाशनम, महान पातक जो हमने किए उन पातक भी नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पे अपने मित्रों के साथ वल्लभी बना के खेलते हैं, वल्लभी यानी सर्कल बना के वहां पे खेलते हैं। और गोपकई ही सहस्रस्तत्र क्षणमेकम दिने दिने तत्रैव रमणात् ही नित्यकालम सगच्छति। और बता दें कि भगवान नित्य रूप से अपनी गोपियों के साथ वहां पे विहार करते रहते हैं, और इसीलिए गौतमीय तंत्र में स्वयं नारद जी भगवान को पूछते हैं कि कृपया आप बताइए हमें किमिदं द्वात्रिंशत् वनम वृंदारण्य विशांपते। हे विशांपते, ये जो आपके द्वात्रिंशत् वनम जो है यानी 32 वन जो है वृंदावन में, ये कैसे है? तो भगवान उसके उत्तर में कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच इदं वृंदावन नाम मम धामैव केवलम, अत्र ये पशवः पक्षी मृगा कीटा नराधमः निवसन्ति मया विष्टे मृतयान्ति मलामयम् अत्र या गोपकन्याश्च निवसन्ति ममालये गोपिन्यस्तता मया नित्यं मम सेवापरायणः पञ्चयोजन वास्ति वनं मे देहरूपकम् कालिंदय सुषुम्नाख्या पर मामृत वाहिनी अत्र देवाश्च भूतानि वर्तन्ते सूक्ष्म रूपतः सर्वदेवमयश्चाहं न त्यजामि वनं कच्चित् आविर्भावास्तिरो भावः भवेन् अत्र युगे युगे तेजोमय इदं ब्रह्म्यं दृशं अदृशं चर्म चक्षुषा। तो अभी ये समझने का हमें अच्छी तरह से प्रयास करना है, इसलिए एक एक श्लोक को हम जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि यहां पे कहते हैं कि इदम वृंदावन नाम मम धामैव केवलम, यह वृंदावन केवल मात्र मेरा ही धाम है। अत्रये पशवा पक्षि मृगा कीटा नराधमः, यहां पशु पक्षी मृग कीट पतंग एवं नराधम मनुष्य तक जो कोई भी निवास करता है वे सभी मुझमें समाविष्ट है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी धामवासी के प्रति हमें अपराध नहीं करना। और कहते हैं कि यहां रहने के कारण यहां मरने पर मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए लोग सोचते हैं कि जीवन की पूर्णावस्था अगर प्राप्त करनी है तो जीवन के अंतिम पड़ाव में वृंदावन में जाके वास करें, क्योंकि यहां भगवान स्वयं कहते हैं निवसंते मयाविष्टे मृता यान्ति मम आलयम्। जो कोई यहां पे रहता है और यहां मरने पर यान्ति मम आलय कहा गया है कि वो मेरे धाम को वापस आता है। तो देखिए वृंदावन में शरीर छोड़ने, इवन नराधम व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसा नहीं कहा कि केवल जो संत व्यक्ति है और जो धाम में अपना शरीर छोड़ देता है तो वो मेरे पास आता है। यहां पे भगवान बोलते हैं कि पशवा पक्षी मृगा कीटा नराधमा, जो वृंदावन में जो पशु है पक्षी है मृग है कीट है और नराधम व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो वहां पे रह के अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से गोलोक धाम को प्राप्त करता है। भगवान बोलते कि मम आलयम यान्ति मम आलयम, मेरे धाम को आता है। और फिर आप एक बताते हैं कि यहां जितनी भी गोपकन्याएं हैं, अत्रया गोपकन्याश्च निवसन्ति मम आलये गोपिन्यस्तथा मया नित्यं मम सेवापरायणः। यहां की जो गोपकन्याएं वे नित्य रूप से मेरा ही संयोग प्राप्त करते हैं और नित्य मेरी सेवा परायण रहने के कारण वो नित्य मेरे ही धाम में वास करती हैं। और फिर आगे बताते हैं भगवान यहाँ पे, पंचयोजनम सेवा अस्ति वनम में देह रूपिकम कालिंदी अयम सुष्णाख्या परम अमृत वाहिनी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि यह पांच योजन विस्तार वाला वृंदावन मेरा शरीर है और परमामृत वाहिनी कालिंदी मेरी सुषुम्ना नाड़ी है। यहां जितने भी देवी देवता है, अत्र देवाश भूतानि वर्तन्ते सूक्ष्म रूपता सर्वदेव मयश्चाहम न त्यजामि वनम क्वचित, कि यहां जितने भी देवता और प्राणी है वे समस्त सूक्ष्म रूप से यहां अवस्थान करते हैं। मैं सर्वदेवमय हूं, कभी भी इस वृंदावन का परित्याग नहीं करता हूं। सर्वदेव मयश्चाहम न त्यजामि वनम क्वचित, क्वचित यानी थोड़ा भी मैं इसका त्याग नहीं करता हूं। और फिर बताते हैं कि इस धाम में मेरा समय समय पर आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। यह तेजोमय सुरम्य धाम है और चर्म चक्षुओं से यह दृष्टिगोचर नहीं होता है। और इसी को देखना है तो क्या करना चाहिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने शुद्ध भक्त चरण रेणु ये गीत में लिखते हैं कि गौरा आमार जे सब स्थाने भ्रमिलो आनंद रंगे से सब स्थान हेरी लो आमी प्रणयी भगत संगे। किसी प्रणयी भक्त के साथ अगर हम धाम का वास करते हैं, धाम में वास करते हैं या धाम की यात्रा करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि हम उस धाम को देख सकते हैं इन चर्म चक्षुओं से नहीं बल्कि अपने कानों से। श्रुते क्षण पंथा कहा जाता है, श्रुत इक्षण यानी कानों के द्वारा देखना, और वो मार्ग है भागवत विधि। भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान की लीलाओं का श्रवण जो करते हैं वो केवल श्रवण मात्र ही नहीं होता बल्कि उससे भगवान का दर्शन होता है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं यहां पे कि इन चर्म चक्षुओं के द्वारा उस धाम को हम नहीं देख सकते, तो उसके देखने की विधि श्रीमद् भागवतम में बताई गई है कि उसको देखना है तो शुद्ध भक्तों के साथ हमें धामवास करना चाहिए या धाम की यात्रा करनी चाहिए, तभी जाके है इस धाम को हम देख सकते हैं। क्योंकि वराह आदि पुराण में कहा गया है कि यह वृंदावन जो है ये नित्य कदंब वृक्षों से भरा रहता है और अप्राकृत वृंदावन धाम का दर्शन इस अप्राकृत अप्राकृत नेत्रों से और केवल दिव्य दृष्टि से ही हो सकता है। इस प्राकृत दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो केवल हमें वहां पे पानी से भरे हुए गटर्स दिखाई देंगे, कीचड़ दिखाई देगा, कचरा फैला हुआ दिखाई देगा और मन में एक घृणा निर्माण हो जाएगी। लेकिन भक्तों के द्वारा अगर भगवान के सुंदर धाम का कोई वर्णन सुन लेता है तो उसके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और उस दिव्य धाम को देख लेता है। क्योंकि वृंदावन में ही शुद्ध भक्तों को गोलोक वृंदावन दिखाई देता है और इसलिए कहा है कि गोलोक में गोकुल और गोकुल में गोलोक का दर्शन होता है जिस समय दृश्यमान भवन वृंदावन में सपरिकर भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। समय उस आविर्भाव को अवतार कहा गया है। उसी समय रस विशेष की पुष्टि के लिए संयोग एवं विरह तथा पुनः संयोगमय विचित्र लीलाओं के द्वारा उनमें परदारत्व आदि विवाह दृष्टिगोचर होते हैं। वृंदावन के प्रकट प्रकाश में इन लीलाओं का जैसा अनुष्ठान होता है अप्रकट प्रकाश में भी वैसा ही होता रहता है। इसका विवरण कल्प तंत्र यामल संहिता पंचरात्र आदि ग्रंथों में दिग्दर्शन के द्वारा प्राप्त होता है। उन विशेषताओं को उन शास्त्रों से जानना चाहिए। वैसे दशम स्कंद में भी कहा है जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत स्वदोर्भिर्यस्यन अधर्मम् स्थिर चरण व्रजनिघ्न सुस्मित श्री मुखेन व्रज पूर्वनितानां वरधयन् कामदेवम्। अर्थात जन समुदाय के हृदय में अंतर्यामी रूप में जिनका निवास है अथवा गोप यादवादि निज जनों में जिनका निवास है या जो समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं या सबके आश्रय है, देवकी के गर्भ से जिनका जन्म है, यह जिनके लिए एक प्रवाद मात्र है अर्थात जो जन्म रहित है, यदु श्रेष्ठ गण जिनके सेवक है या जो यादवों के सभापति है, जो अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी अपनी भुजाओं के बल से अथवा अपने समान भीम अर्जुनादि भक्त रूप बाहुबल के द्वारा धर्म विद्वेष असुरों का संहार करते हैं, जो स्थावर जंगम आदि प्राणियों के संसार दुख का हरण करते हैं या जो व्रजपुर स्थित चर अचर प्राणी मात्र के तदीय विरह जनित दुखों का हरण करते हैं तथा अपने प्रसन्न मुखारविंद द्वारा व्रजपुर की वनिताओं का या मथुरा द्वारका और ब्रजपुर की वतीन वनिताओं का कामवर्धन करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण का विजय हो। और भी पद्म पुराण के निर्वाण खंड में श्री भगवान और वेदव्यास जी के संवाद में कहा गया है, वहां पे बताते हैं कि भगवान ने कहा है कि हे व्यास, मैं तुम्हें वेद गोपनीय स्वरूप का दर्शन कराता हूं, तुम उसका दर्शन करो। और तदनंतर श्री व्यासदेव भगवत स्वरूप का दर्शन कर कहते हैं कि हे राजन, मैंने गोपकन्याओं द्वारा परिवेष्टित तथा गोप बालकों के साथ हंसते हंसते नीले जलद के समान श्यामल कांति वाले उन परम पुरुष श्री कृष्ण का दर्शन किया। यह कन्या पद के द्वारा गोपियों का विशेषत्व दिखाया गया है। विशेषता यह है कि ये गोपियां पूर्ण यौवन न होकर भी अलब्ध स्त्री धर्म अर्थात नारी धर्म विहीन है, अथवा श्री कृष्ण में प्रेमवती तो है परंतु अपुष्पवती है। इस प्रकार इनको अप्राप्त वयस का कहने से ये नित्य किशोरिया है। अतएव गोपियों को कन्या पद से उल्लेख कर उनकी दूसरी स्त्रियों से समता खंडन की गई है। ऐसे गौतमीय तंत्र के चतुर्थ अध्याय में कहा है कि अथ वृंदावनम ध्यायेत, अनंतर वृंदावन का ध्यान करे। यहां से प्रारंभ कर उनका ध्यान वर्णन करते हैं। स्वर्ग से अर्थात गोलोक धाम रूप स्वर्ग से सैकड़ों गोप कन्याएं गोप समुदाय एवं गोवत्स आदि यहां अवतीर्ण होकर सर्वत्र ही सुशोभित है। ऐसे सुरम्य वृंदावन में कमल जैसी सुदीर्घ नेत्रों वाली हजारों हजारों गोपियां भावुक कुसुम के द्वारा उस त्रैलोक्य गुरु श्री हरि का पूजा अर्चना करती है। इसी प्रकार उसी ग्रंथ में यानी यामल में कहा गया है कि जिन्होंने दर्शन किया उन सबके सदाचार प्रसंग में कहते हैं कि अहर्निशम जपे मंत्रम मंत्री नियत मानसाहा सपश्यन्ति न संदेहो गोप रूप धर्म हरि। अर्थात जो मंत्र साधक निरंतर एकाग्र चित्त होकर दिवानिशी कृष्ण मंत्र का जप करता है वह गोपवेशधारी श्री कृष्ण का निश्चित रूप से दर्शन करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भी उसी ग्रंथ में अन्यत्र उल्लेख है, वृंदावने वसेत धीमान यावत कृष्णस्य दर्शनम। अर्थात बुद्धिमान पुरुष वृंदावन में तब तक वास करे जब तक कृष्ण का दर्शन होता रहे। और भी त्रैलोक्य सम्मोहन मंत्र तथा अष्टादश अक्षर मंत्र प्रसंग में कहा है, जो एकाग्र चित्त होकर इस मंत्र की साधना करता है वह निश्चित रूप से गोपवेशधारी श्री कृष्ण का दर्शन करता है। अतएव श्री गोपाल तापनी में ब्रह्मा जी कथन करते हैं कि तदुवाच आदि श्रुतियों में कि हे वत्स, मेरी परम आयु के प्रथम भाग में जब मैं वर्तमान था उस समय मैंने परब्रह्म श्री कृष्ण का ध्यान और स्तव किया। उस समय ब्राह्मी निशा के अवसान होने पर वे मेरे हृदय में गोप वेश में आविर्भूत हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण का परमेश्वर परब्रह्म परम पुरुष आदि रूपों में वर्णन होते हुए भी कहीं कहीं उनका शिरोदशाही के अवतार रूप में जो सुना जाता है वह केवल उनमें अंशात अवतारों के प्रवेश होने से ही इस प्रकार का वर्णन किया गया है, इसलिए यहां विस्तार करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। श्री कृष्ण संदर्भ में इसका विशेष रूप से वर्णन हुआ है। इस प्रकार भगवान की प्रपंचगत महिमा का वर्णन कर यहां भगवान के निजस्व धाम की महिमा गोलोक नामनी इस श्लोक के द्वारा कर रहे हैं। श्री गोलोक धाम सारे लोकों से ऊपर में विराजमान है, परंतु लोक पितामह ब्रह्मा जी देवी धाम के अंतर्गत ब्रह्मलोक में अवस्थित है, इसलिए वे यथार्थ क्रम में विपरीत नीचे से ऊपर तक अवस्थित लोकों में विराजमान भगवत महात्म्य का वर्णन करते रहते हैं। यथार्थ क्रम से तो श्री गोलोक, उससे नीचे वैकुंठ लोक, उससे नीचे महेश लोक और उससे भी नीचे देवी लोक अवस्थित है। निम्न और ऊर्ध्व क्रम विवेचन उन लोकों में विराजमान भगवान महिमा के तारतम्य के अनुसार ही होता है। गोलोक धाम की सर्वोर्धगामिता और व्यापकता का शास्त्रों में यत्र तत्र सर्वत्र ही संस्थापित है। यदि कहो कि वृंदावन धाम तो देवी धाम के ही अंतर्गत है तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भौम जगत में वृंदावन की स्थिति प्रतीत होने पर भी वह प्रतीति केवल योगमाया के प्रभाव से दिख पड़ती है। यथार्थतः श्री वृंदावन गोकुल धाम गोलोक धाम से अभिन्न है। दोनों का अभेद शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर पहले दर्शित किया जा चुका है। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में वर्णित है, सतु लोकस्त्वया कृष्णा निघ्नो उपद्रवान गवाम। अर्थात हे कृष्ण, हे वीर, वृंदावन नामक लोक विपन्न होने पर हे धृतिमान सर्वसर्वमथ, आपने उसको धारण कर गो गोपी समूहों को, सारे गोकुल को उपद्रव से उद्धार किया है। इस कथन से गोलोक और वृंदावन की अभेद प्रतीति होती है। इसी प्रकार गोलोक एव निवसिति में एव के उल्लेख द्वारा गोलोक और वृंदावन का अभेद अर्थ ही अभिव्यंजित है, क्योंकि भूलोक में प्रकाशमान वृंदावन नामक स्थान में श्री कृष्ण की नित्य स्थिति का वर्णन शास्त्रों में उल्लेखित है। आदि वराह पुराण में कहा गया है, वृंदावनम द्वादशकम सेवितम। तो अगर देखा जाए और समझने का प्रयास करें तो सबसे ऊपर विराजमान श्री गोलोक धाम है, और फिर उसके नीचे ब्रह्मा जी बताते हैं यहां पे कि हरिधाम यानी वैकुंठ है, जहां पे भगवान के चतुर्भुज रूपधारी अनेक स्वांश अवतार रहते हैं, और उसके नीचे है फिर महेश धाम, जहां पे भगवान शिव निवास कर रहे, और फिर है देवी धाम, और ब्रह्मा जी देवी धाम के अंतर्गत ब्रह्मलोक या सत्यलोक से ऊपर की ओर देखकर ही पहले देवी धाम और तदनंतर क्रमशः महेश आदि धामों में विराजित भगवान महिमा का वर्णन कर रहे हैं। देवी महेश हरिधाम सुतेषु, जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तो पहले नीचे वाली चीज बताओगे ना, ये है फिर इसके ऊपर वो है फिर उसके ऊपर वो है फिर उसके ऊपर वो है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठकर ही बता रहे कि भाई, हालांकि ब्रह्मलोक देवी धाम का सबसे ऊपर वाला लोक है, इस जगत जड़ जगत में क्या क्या है, भू भुवः स्वः, फिर मह, फिर जन, फिर तप और फिर सत्यलोक। तो ये ऊपर के 14 भुवनों में से ये ऊपर के 7 लोक है, और सबसे ऊपर है सत्यलोक या ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक। तो वहां से बैठकर ब्रह्मा जी देख रहे ऊपर और बता रहे क्या है, देवी महेश हरिधाम तेषु, और वे कहां पे, गोलोक धामनी निज धामनी तले चतस्य। तो गोलोक धाम के नीचे ये एक एक करके सब है। तो ये हो गए ऊपर के 7 लोक, और फिर नीचे के 7 लोक भी है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पातल, और ये सारे 14 लोक जो है ये देवी धाम के अंतर्गत है, और फिर उसी देवी धाम के ऊपर है शिव धाम जिसको महेश धाम भी कहा गया है। उस धाम का एक भाग अंधकार में है और दूसरा प्रकाश में है, और उसमें वह जो अंधकार में धाम जो है, जो अंधकार में भाग जो है उसको कहा गया है महाकाल धाम, और जो प्रकाशमय धाम है उसको कहा गया है सदाशिव धाम और सदाशिव लोक, और फिर उसके ऊपर स्थित है हरिधाम जो कि कई सारे वैकुंठ लोक अवस्थित है। तो भगवान उन उन धामों में अपना अपना प्रभाव उन उन धामों के गुणवत्ता के अनुसार प्रभावित करते हैं। जैसे देवी धाम में माया का वैभव रूप प्रभाव है, और एवं शिव धाम में काल और द्रव्यमय वैभव रूप व्यूह प्रभाव है, तथा विभिन्न अंशागत स्वांश आभासमय प्रभाव है, किंतु हरिधाम वैकुंठ में चिद ऐश्वर्यमय प्रभाव। इस प्रकार गोलोक में सर्व ऐश्वर्य का निराशकारी महामाधुर्यमय प्रभाव है। ऐसे ऐसे प्रभाव समूह का नियमन उन उन धामों में जिन्होंने साक्षात और गौण रूप से किया है वे आदि पुरुष श्री गोविंद है, और मैं उनका भजन करता हूं, ऐसे ब्रह्मा जी हमें बताता हूं। क्योंकि जिसकी जितनी जो पात्रता है उसके अनुरूप उस व्यक्ति को उस धाम की प्राप्ति हो जाती है। जैसे पहले हमने चर्चा की है, यद भाव भावितो धियो मनुजास्ततैव संप्राप्य रूप महिमा असनायान भूषः, कि जो जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसी के अनुकूल उसको स्थान, ये यहाँ पे अभी इसमें यहाँ पे हमें समझ में आता है, उसके अनुरूप उसको स्थान, उसी के अनुरूप उसका आभूषण वेशभूषा, और उन उन स्थानों के अनुसार भगवान की स्तुति के लिए वेदों के मंत्र भी दिए गए हैं। तो यह बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि सबके सब कृष्ण भक्त बन जाएंगे। हर एक की चेतना का स्तर अलग है, उसके अनुसार उसकी साधना का स्तर अलग है, उस साधना के अनुसार उसका साध्य अलग है। अगर सबके साध्य भगवान होने हैं तो उसके लिए एक पात्रता की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता है कि केवल अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति, पवित्र भक्ति जिसमें किसी भी प्रकार की आशा ना हो, ना ज्ञान की प्राप्ति की आशा हो, ना भोगों की प्राप्ति की आवश्यकता हो। अगर उस भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तभी भगवान के उस दिव्य धाम को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी हम मुड़ते हैं पंचोपासना के ऊपर। जैसे हमने कल बताया था कि आज हम पंचोपासना, पंचदेवोपासना को समझने का प्रयास करेंगे। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने वेदों में प्रणीत यह पंचोपासना का बहुत ही सुंदर रूप से प्रचार किया, और उसमें फिर भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा, गणेश जी और सूर्यदेव, इनकी उपासना के बारे में कहा गया है। तो भगवान अपने आप को कैसे प्रकट करते इन रूपों में, और ये कैसे, ये सारे रूप कैसे भगवान से शक्तियां प्राप्त करके इस भौतिक जगत में अपना कार्य करते, उसका वर्णन यहाँ पे ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो आइए ये 44 वाले श्लोक में दुर्गा देवी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और ब्रह्मा जी उनके लिए क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। तो यहां पे बताया गया है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि विवरति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो यहां पे बताते हैं कि स्वशक्ति रूप या चित्त शक्ति की छाया रूप प्रापंचिक जगत में जो एक शक्ति विद्यमान है, जो इस सृष्टि स्थिति और प्रलयन का जो शक्ति है, उसे ही इस भुवन में दुर्गा कहा जाता है। तो जैसे कि पहले बताया गया पहले के श्लोक में कि देवी धाम, महेश धाम, हरिदान और सबसे ऊपर अवस्थित गोलोक धाम का वर्णन है। तो संप्रति उन उन धामों के आश्रय अर्थात अधिष्ठाता देव देवियों का वर्णन सृष्टि स्थिति आदि इस श्लोक में किया गया है। और सबसे पहले बताते कि 14 भुवनों की जो अधिष्ठाती देवी है उसको दुर्गा कहा गया है, और श्रुतियों में भी कहा गया है कि त्वम अकर्णाहा स्वराड अखिल कारक शक्ति धरस्तव बलिम उद्वहंती समदंत्य जयान मिशह। श्रीमद भागवत में जो श्रुतियों ने भगवान की स्तुति की है वहां पे कहा गया है कि हे प्रभु, आप प्राकृत इंद्रिय संबंध से रहित सर्व स्वतंत्र ईश्वर होकर भी समस्त प्राणियों की संपूर्ण इंद्रिय शक्ति की परिचालना करते हैं, और खंड राज्य के अधिपतिगण जैसे अपनी अपनी प्रजाओं के प्रदत्त उपहारों को ग्रहण कर उन उपहारों को अपने अधीश्वर महामंडलेश्वर को प्रदान करते हैं, वैसी ही दुर्गा देवी, महेश आदि अधिष्ठाती देव देवियां समस्त पूजा उपहार आप गोलोकपति श्री गोविंद देव के चरण कमलों में ही अर्पण करते हैं। आपसे भयभीत होकर ही प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अधिकार के अनुरूप कर्मों को संपादन करता है। श्री दुर्गा देवी भी इसी प्रकार धाम की अधिष्ठात्री देवी होकर श्री गोविंद देव के श्री चरण कमलों में पूजो उपहार समर्पण करती है। तो आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते कि माता दुर्गा को किस प्रकार से हमें समझना चाहिए, क्योंकि देवी भागवत में भी वर्णन है कि सब कुछ माता दुर्गा से ही उत्पन्न है। तो यहां पे ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं कि इस जगत की अधिष्ठाती देवी जो है वो दुर्गा है, और वे दश प्रकार के कर्मरूप दश भुजाओं वाली है। वीर प्रताप में वो अवस्थित होने से वे सिंहवाहिनी है, पाप दमिन दमन रूपा महिषासुर मर्दिनी है, शोभा और सिद्ध रूप कार्तिकी और गणेश दो पुत्रों की जननी है, जड़ ऐश्वर्य और जड़ विद्या संगिनी रूपा लक्ष्मी और सरस्वती की मध्यवर्तिनी है। वे पाप दमन करने के लिए बहुत प्रकार के वेदोक्त धर्म रूप विशांति अस्त्र धारिणी है, और काल शोभा विशिष्ट होने से वे सर्प शोभिनी भी है। इतने सारे स्वरूपों से विशिष्ट वे दुर्गा जी है। और वे दुर्गा जी विशिष्टा है, भगवान की एक विशिष्ट शक्ति है, क्योंकि दुर्गा शब्द से समझा जा सकता है कि कारागार, अर्थात तटस्था शक्ति प्रसूत जो जीवगण है, यानी आप हम सब, जब भगवान श्री कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं तो इस प्रापंचिक कारागार में, इस संसार में हम अवरुद्ध होते हैं, और वही ये दुर्गा जी का दुर्ग है। और फिर यहां पे कर्म के चक्र में पीसना ही हमारी शिक्षा है, यही हमारा दंड है। और बहिर्मुख जीवों के प्रति उस प्रकार का शोधन प्रणाली युक्त कार्य ही श्री गोविंद के इच्छानुरूप कर्म है। और दुर्गा जी अपने कार्य में कुशल है, और जब किसी उत्तम सौभाग्यवश जब किसी साधुओं का संग प्राप्त होता है, और जीव अपनी बहिर्मुखता को, भगवान से जो विमुखता है उसको छोड़ के जब भगवान की सेवा में हो लग जाता है, अंतर्मुख होके भगवान की सेवा में जब लग जाता है, तब पुनः गोविंद की इच्छा से दुर्गा ही उन जीवों की मुक्ति का कारण होती है। जो हमें बंधन में बांध के रखती है वही हमें बंधन से मुक्त करती है। कब मुक्त करती है? जब जीवात्मा किसी साधु का संग करता है और भगवान की ओर मुड़ता है। अभी हमारी स्थिति कैसी है? भगवान ऐसे सामने है और हम ऐसे उल्टी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन जब साधु से संपर्क आता है तो हमें वो भगवान के अंतर्मुख कर लेता है और भगवान के पास हम जाते हैं। हालांकि उसमें कई बाधाएं रहती है, लेकिन जब जीव प्रखरता से भगवान की ओर जाने की इच्छा करता है या अंतर्मुख होने की इच्छा करता है तो भगवान उसे वो प्राप्त करवा देते हैं। माता दुर्गा को बोल के उसको, माता दुर्गा की जो दंड प्रणाली है उसमें थोड़ी सी शिथिलता दे देते हैं और वो जीव फिर भगवान की ओर मुड़ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग धन जन पुत्र परिवार की प्राप्ति तथा उत्तम आरोग्य प्राप्ति के लिए जब दुर्गा की उपासना करते हैं तो वो दे देती है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि उस देवी, वो देवी की कृपा नहीं है बल्कि कपट कृपा है, क्योंकि उसी के द्वारा फिर से व्यक्ति इस भौतिक जगत में डूबा रहेगा। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे के आछे परति थी, क्योंकि ये सारे लोग यहीं पे काम में नहीं आते। मृत्यु के समय कोई आपको मृत्यु से बचा नहीं सकता है, तो फिर इथे के आछे परत इते रहे, वहां पे उनका क्या काम रहेगा? और समझो धनम दे ही पुत्रम दे धन पुत्र लाभ सौख्यम दे, ये सारा दे भी दिया तो वो हमें यहाँ पे बांधने वाला है और सारी जो श्रृंखलाए है उनमें हम बंधने का प्रयास करते। और फिर इसी प्रपंच में हम फंसे रहते हैं। इसलिए अगर सही में आपको माता से कुछ मांगना है तो निश्चित रूप से आप भगवत भक्ति मांगिए, क्योंकि उससे वे भी प्रसन्न होकर इस कर्म चक्र से आपको मुक्त कर लेगी। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि विलज्जमानाय यस्य स्थानम इक्षापते मुयः विमोहिता वित्कथेन ममाहम इति दुर्धियः, कि बहिर्मुख जीवों के साथ ही माता दुर्गा का संबंध आता है। जड़ जगत में जिन दुर्गा जी की पूजा होती है वे छाया रूप दुर्गा है, परंतु भगवत धाम के आवरण रूप में जिन मंत्रमयी दुर्गा का वर्णन है वे चिन्मया कृष्णदासी है, और छाया दुर्गा उनकी दासी रूप में जगत में कार्य करती रहती है। और तीसरे श्लोक में ही ब्रह्म संहिता के इसके बारे में वर्णन हो चुका है। तो वो जो कृष्णदासी है, माया ही अस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमान, और वे भगवान के मार्गदर्शन में ही जीवों को यहां पे, जो बहिर्मुख जीव है जो भगवान से दूर गए हैं उनको यहां पे वो बांध के रख देती है, बंधन में डाल देती है। और जो उससे छूटने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें उसमें वो मदद भी करती है। तो जो छाया रूप है, छाया ही यस्य जगदंड शतानि सूते, जो सूते यानी जो प्रसव करती है इस पूरे ब्रह्मांड का, ताकि ये अलग अलग अपने कर्मों के चक्र के अनुसार जीव यहां पर दंड भुगतते रहे। इस दंड को समझकर जो जीवात्मा भगवान की ओर मुड़ जाता है वो निश्चित रूप से इस माता के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम कल चर्चा करेंगे शिव तत्व के बारे में। तो कल का प्रवचन थोड़ा लंबे समय तक हो सकता है, क्योंकि हमें जानना है कि भगवान शिव कौन है, उनकी हमारे वैष्णव सिद्धांत में उनकी क्या स्थिति है और किस प्रकार से हम उनकी उपासना कर सकते हैं, किस भाव से हम उनकी भक्ति कर सकते हैं, किस भाव से हम उनको जान सकते हैं, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। थोड़ी दीर्घ हो सकती है क्योंकि कई शास्त्रों के प्रमाणों के साथ हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ महीनों पहले बहुत ही उथल पुथल हो चुकी थी, क्योंकि कई तथाकथित वैष्णव भगवान शिव की उपासना के बारे में खंडन कर रहे थे और भगवान शिव की जो स्थिति है वो उसको बहुत ही निम्न स्तर पर लेके जा रहे थे और उसी के कारण जनता में कुछ उद्वेग निर्माण था। तो कल हम प्रयास करते हैं कि वैष्णवों के अनुसार शिव तत्व क्या है, किस प्रकार से हमें उन्हें समझना है और वे कैसे हमारे भक्ति के लिए पूरक है। तो कल हम चर्चा करेंगे ब्रह्म संहिता के 45वें श्लोक पे, जहां पे भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण का संबंध क्या है उसके बारे में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया गया है और श्रीपाद जीव गोस्वामी में मिनी जी ने भी बहुत ही सुंदर रूप से टीका दी है। उस टीका के अनुसार तथा अन्य ग्रंथों के संदर्भ से कल हम भगवान शिव जी को या शिव तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमसे जुड़े रहे और ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहे ताकि इसी प्रकार से इन सुंदर दिव्य ग्रंथों का हम अच्छी तरह से अध्ययन और अध्यापन कर सकें। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।